परमेश्वर के नाम की महिमा हो। एक और सुंदर समय परमेश्वर ने हमें दिया कि इस प्रकार परमेश्वर की पावन उपस्थिति में जमा होकर परमेश्वर के शाश्वत और अद्भुत और जीवित वचन की मनादी हम कर सकें। और परमेश्वर का वचन जब हम अध्ययन करते हैं, जैसा मैंने कल सुबह बताया, बहुत ध्यानपूर्वक परमेश्वर का वचन सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रायः ऐसा देखने में आता है परमेश्वर का वचन सुनने का समय होते ही नाना प्रकार की चिंताएं और बातें मन में आने लगती हैं, और थोड़ा इधर भी सुनते हैं, थोड़ा उधर की भी सुनते हैं, थोड़ा कल की भी सुनते हैं, थोड़ा आने वाले कल की भी सुनते हैं, और फिर कोई पूछता है कहां से आ रहे हो, मीटिंग से आ रहे हैं, क्या सुना, तो अलग खिचड़ी पड़ती। बहुत समय पहले एक बच्ची संडे स्कूल में गई, तो घर आने के बाद माँ बाप ने पूछा, बेटा कहां गई थी? बोले संडे स्कूल गई। अच्छा, तो संडे स्कूल में क्या सिखाया? तो बोले मैडम ने सिखाया कि शैतान यीशु मसीह के पास था, शैतान यीशु मसीह के पास। तो बोले क्या हुआ फिर? तो शैतान बोले कि मेरे साथ घूमने चलो। तो यीशु मसीह शैतान के साथ घूमने गया, तो शैतान यीशु मसीह को वो मंदिर के ऊपर ले टेरेस में ले गया और बोला, देखो यीशु मसीह यहां से कूदो, नीचे कूदो। वो फिर क्या हुआ? तो फिर क्या हुआ? यीशु मसीह कूद गया। वो फिर क्या हुआ? अरे फिर क्या हुआ, इतना ऊपर से कूदेगा बचेगा क्या? यीशु मसीह मर गया, मर गया। फिर क्या हुआ? अरे फिर वो मनुष्य थोड़ी, वो तो ईश्वर था, वो तो परमेश्वर है यीशु मसीह, इसलिए तीन दिन के बाद वापस जिंदा हो गया। फिर कुछ नहीं, अभी वो जीवित है, अब वो वहां पर है, हम यहां पर है, और इतना ही सीखा बस। तो इस प्रकार की अवस्था हमारे ना होने पाए, इसलिए बड़े ध्यान पूर्वक और प्रार्थना पूर्वक और उत्साह पूर्वक जब हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं, वास्तव में परमेश्वर के वचन से हम आशीष पाते हैं। कल शाम को हमने यूसुफ के बारे में देखा, मैंने कहा हम इन दिनों में ऐसे व्यक्तियों के जीवन का अध्ययन कर रहे हैं जिसके बारे में, जिनके जीवन के बारे में परमेश्वर के वचन में कोई नुक्स, हाँ, कोई गलती, कोई खोट, उनके जीवन में कुछ अनुचित काम उन्होंने किया, ऐसा वर्णन या ऐसा रिकॉर्ड बाइबल में हम नहीं पाते, जबकि बाइबल एक ऐसी पुस्तक है जिसको हम निष्पक्ष पुस्तक कहते हैं। हर एक परमेश्वर के भक्त की अच्छाई भी लिखी है और बुराई भी लिखी है। अच्छाई हमारे भलाई के लिए लिखी है, बुराई हमारी सावधानी के लिए लिखी है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनके बारे में सिर्फ अच्छी बातें ही लिखी है, कोई बुराई, कोई खोट, कोई गलती, कोई अनुचित काम उन्होंने किया, परमेश्वर को अप्रसन्न किया, परमेश्वर को खेदित किया, परमेश्वर को दुखी किया, ऐसा कोई वर्णन, ऐसा कोई रिकॉर्ड बाइबल में उनके नाम के प्रति नहीं है। तो उनके जीवन का जब हम अध्ययन करते हैं, उनके जीवन का जब हम अनुसरण करते हैं, उनके जीवन के पदचिन्हों पर जब हम अपना जीवन बिताते हैं, हमारा जीवन भी परमेश्वर की दया से, अनुग्रह से एक ऐसा धन्य जीवन बनता है कि परमेश्वर हमसे भी प्रसन्न होता है और हमें भी अपनी आशीष देता है। कल शाम को हमने यूसुफ के जीवन में से अध्ययन किया था और देखा था कि यूसुफ कितना महान व्यक्ति था, यूसुफ कितना एक धन्य व्यक्ति था, उसने अपने जीवन में कोई गलती या कोई अनुचित काम नहीं किया था, लेकिन परमेश्वर को प्रसन्न करता हुआ जीवन उसने हमेशा बिताया। आज शाम को थोड़ी देर के लिए एक और ऐसे व्यक्ति के बारे में देखेंगे जिसके बारे में परमेश्वर कुछ गलती नहीं लिखता है, लेकिन सारी अच्छाई उसके बारे में वर्णन है। हम देखेंगे उस व्यक्ति का नाम है नहेमिया। नहेमिया के पुस्तक में को जब हम अध्ययन करते हैं और एज्रा के पुस्तक में भी थोड़ा वर्णन नहेमिया के बारे में है और नहेमिया के पुस्तक में खास तौर से नहेमिया के जीवन का विस्तृत वर्णन और बातें हम देखते हैं और नहेमिया के जीवन में से हम देखेंगे कौन कौन से उसके जीवन के सद्गुण थे, अच्छी बातें थी जिसके द्वारा उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। वैसे मैं पहले बता दूं, जो बातें आज शाम को हम थोड़ी देर देखने की कोशिश करेंगे केवल वही बातें नहेमिया के जीवन में है ऐसा नहीं सोचना। नहेमिया का जीवन जो हम अध्ययन करें, बहुत दिनों का यह अध्ययन है, बहुत ही लंबा अध्ययन है, बहुत ही श्रेष्ठ उसका जीवन है। कल यूसुफ के जीवन में से हमने चार बातें देखी। इसका मतलब ये नहीं कि यूसुफ के जीवन में केवल चार बातें ही अच्छी हैं, नहीं, बहुत सारी बातें हैं। हमारे समय और सहूलियत के लिए हमने चार मुख्य बातें देखी। उसी प्रकार नहेमिया के जीवन में से भी बहुत सारी बातें सीखने के लिए, बहुत सारी बातें समझने के लिए है, बहुत सारी बातें देखने के लिए है। सब पर जाने का समय नहीं है, लेकिन कुछ खास बातें, कुछ ऐसी दिलचस्प बातें, कुछ ऐसी बुनियादी बातें जिसका हम ध्यान रखें, जिसका हम ख्याल करें और जिसके अनुसार अगर हम भी अपना जीवन बिताएं, हम भी नहेमिया के समान एक धन्य जीवन बिता सकते हैं। नहेमिया के जीवन में से कुछ अच्छी बातों को हम देखेंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे नहेमिया की पुस्तक, उसका दूसरा अध्याय। नहेमिया की पुस्तक उसका पहला अध्याय और उसका चार पद। नहेमिया चैप्टर 1:4, नहेमिया की पुस्तक 1 अध्याय उसका 4 पद।
ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा और इतने दिन तक विलाप करता और स्वर्ग के परमेश्वर के सन्मुख उपवास करता और ये कहकर प्रार्थना करता रहा।
ये कहकर क्या करता था? प्रार्थना करना। मतलब नहेमिया प्रार्थना करने वाला एक पुरुष था। नहेमिया वॉज अ मैन ऑफ प्रेयर। नहेमिया प्रार्थना पुरुष था। सारे जीवन के परिस्थितियों को सामना करने के लिए परमेश्वर के सामने वो प्रार्थना करके अपना जीवन बिताता था। परमेश्वर से वो प्रार्थना में समय बिताता था। यहां पर हम देखते हैं जब वो राज दरबार में काम करता था, उसका एक बहुत अच्छा नौकरी था, राजा के महल में राजा को पानी पिलाना, राजा का सेवा करना, ये उसका काम है। राजमहल में रहता था, राज दरबार में वास करता था, राजशाही नौकरी वो करता था। लेकिन यरूशलेम से जब उसके बंधु लोग आकर यरूशलेम का हाल सुनाया, वो दुखी हो गया और दुखी होने के बाद परमेश्वर के सामने बैठकर वो प्रार्थना करने लगा। लिखा है बहुत दिनों तक वो प्रार्थना करता रहा। और वही नहीं, आगे के अध्यायों को जब हम पढ़ेंगे हम देखते हैं केवल बड़ी बड़ी बातों के लिए नहीं, जीवन के हर परिस्थिति में, हर एक खास समय में नहेमिया प्रार्थना करके अपना समय बिताता था। हम पढ़ेंगे, देखिए दूसरा अध्याय 4 पद, chapter 2:4।
राजा ने मुझसे पूछा, तू क्या मानता है? तब मैंने स्वर्ग के परमेश्वर से प्रार्थना करके राजा से कहा।
ध्यान दिया आपने? राजा नहेमिया से पूछ रहा है, नहेमिया तेरे को क्या चाहिए? नहेमिया राजा से बात करने से पहले किससे बात कर रहा है? परमेश्वर से। राजा को जवाब देने से पहले परमेश्वर से प्रार्थना। कैसे प्रार्थना किया होगा? जोर से नहीं किया होगा, लंबी चौड़ी प्रार्थना नहीं किया होगा, मन में प्रार्थना किया होगा, शायद 2 शब्द, शायद 3 शब्द, शायद 4 शब्द की प्रार्थना की होगी, मन में आमीन बोला होगा। राजा ने सवाल पूछा, पहले राजाओं के राजा से प्रार्थना किया, उसके बाद दुनिया के राजा को जवाब। मतलब हर परिस्थिति के लिए वो प्रार्थना करने वाला पुरुष के रूप में हम देखते हैं। फिर आगे जब हम पढ़ते हैं उसका 4 अध्याय और उसका 9 पद हम पढ़ेंगे, chapter 4:9।
परंतु हम लोगों ने अपने परमेश्वर से प्रार्थना की और उनके डर के मारे उनके विरुद्ध दिन रात के पहरुए ठहरे।
हाँ, यहाँ पर 8 पद में आप पढ़ते हैं, तब सब ने एक मन से प्लान किया कि यरूशलेम में जाकर हम उनसे लड़ाई करेंगे, उनके काम में हम गड़बड़ी पैदा करेंगे और उनको हम परेशान करेंगे। ये सारी बातें सुनकर नहमिया ने क्या किया? नहमिया ने काउंटर प्लान नहीं बनाया। नहमिया ने ये नहीं सोचा वो यहां से आएंगे तो हम यहां से जाएंगे, वो एक मारेंगे तो हम दो मारेंगे, ये बातें नहमिया के मन में नहीं आए। जब नहमिया ने सुना कि लोग एक मन के साथ योजना बना रहे हैं, हमारे काम में वो खलल डालने वाले हैं, हमारे काम में वो गड़बड़ी करने वाले हैं, नहमिया ने परमेश्वर से प्रार्थना किया। मतलब इस बात को हमें सिखाता है कि नहमिया हर समय प्रार्थना करने वाला एक व्यक्ति था। और अजीज विश्वासियों, जब आप और मैं हम प्रार्थना करते हैं, इसका मतलब क्या है मालूम है? जब आप और मैं हम प्रार्थना करते हैं, इसका मतलब यह है कि हम परमेश्वर से कह रहे हैं, प्रभु जी मैं अपने आप कुछ नहीं कर सकता, लेकिन आप मेरे लिए मेरा काम कर दीजिए। मुझे नहीं मालूम किसने कहा है, लेकिन कहने वाले ने बिल्कुल सही कहा है, When we work, but when we pray, God works. जब हम काम करते हैं हम काम करते हैं, लेकिन जब हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर काम करता है। तो जब हम प्रार्थना नहीं करते हैं, हम कहते हैं मैं कर सकता हूं, ये मेरे बस की बात है, ये मेरे हैसियत की बात है, ये मेरे शक्ति की बात है, ये मेरे ओहदे की बात है, ये काम मेरे से संभव है, मैं कर सकता हूं, मेरे को परमेश्वर नहीं चाहिए, मेरे को परमेश्वर का अनुग्रह नहीं चाहिए, नहीं मैं कर सकता। लेकिन जब हम प्रार्थना करते हैं, हम प्रभु से कह रहे हैं, प्रभु जी ये काम मैं नहीं कर सकता, ये काम मेरे से असंभव है, ये काम मैं कभी भी नहीं कर सकता, मेरे को आपका अनुग्रह चाहिए, मेरे को आपकी सहायता चाहिए, प्रभु जी आप मेरे लिए काम कीजिए। प्रार्थना करने के द्वारा अपना विश्वास हम परमेश्वर पर रखते हैं, प्रार्थना करने के द्वारा अपना भरोसा हम परमेश्वर पर रखते हैं। राजा ने नहमिया से पूछा, नहमिया ने राजा को जवाब देने से पहले परमेश्वर पर विश्वास किया, प्रार्थना किया, उसके बाद राजा को जवाब दिया। अजीज विश्वासियों, क्या इस प्रकार का एक भरोसा, इस प्रकार का एक विश्वास, इस प्रकार का एक ईमान हमारे परमेश्वर पर हम रखते हैं? मुझे आज भी याद है जब मेरी बेटी छोटी थी, अभी भी छोटी है, लेकिन जब और छोटी थी मैं उसके साथ एक खेल खेलता था। उसको ऐसे खिड़की के ऊपर ऐसा खड़ा करता था और उससे कहता था, बेटी कूद डैडा पकड़ूंगा, तो कूद डैडी पकड़ूंगा। तो वो नादान थी, वो कूदती थी और मैं बराबर उसको पकड़ता था, ध्यान रखता था, नहीं तो टपक जाएगी तो हाथ पैर टूट जाए। तो मैं ध्यान से उसको पकड़ता था और वो बहुत खुश होती थी। हमारा ये खेल देखकर उसकी मां आई और उसकी मां ने कहा, बेटा कूद मैं पकड़ूंगी। आपको मालूम है क्या हुआ? वो नहीं कूदी, वो नहीं कूदी। फिर उसके बाद उसका चाचा आया, चाचा मतलब मेरा छोटा भाई, बोला बेटा कूद चाचा पकड़ेगा। क्या हुआ मालूम है? कूदा नहीं, कूदा। फिर बाद में मैं आया तो मेरा भाई बोले, अब आपके हाथ में भी नहीं कूदी, मेरे पास नहीं कूदी, चाचा के पास नहीं कूदी, अब आपके पास नहीं कूदेंगे, वो पहले अनजाने में कूद रही अब नहीं कूदी। मैंने कहा बेटा कूद डेढ़ा पकड़ूंगा। क्या हुआ मालूम है? मतलब वो क्या जाहिर करना चाहती है? मेरे को सिर्फ अपने डैडी पर भरोसा, उसके जितना मोटा आदमी कोई परिवार में नहीं, उनके जितना बड़ा हाथ है, उनके जितना ताकतवर हाथ चाचा का नहीं, मां का तो है ही नहीं, कोई भी नहीं पकड़ सकता है, डैडी के अलावा मेरे को कोई भी नहीं पकड़ सकता। जब हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करके हर काम करते हैं, हम कहते हैं प्रभु जी आपके अलावा मेरे को किसी और पर भरोसा नहीं, मेरे को आपका सहारा चाहिए, मेरे को आपका अनुग्रह चाहिए, मेरे को आपकी सहायता चाहिए, मेरे को आपका मदद चाहिए। और इस प्रकार जब हम प्रार्थना करके हर काम करते हैं, प्रभु हमारी सहायता करता है। कई बार हम बड़े बड़े कार्यों के लिए प्रार्थना करते हैं, छोटे छोटे कार्यों के लिए प्रार्थना करना भूल से जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कुलोसियों की पत्री 3 अध्याय में हमें बताता है, जो भी काम हम करते हैं परमेश्वर का नाम लेकर करना, बहुत परमेश्वर का नाम लेकर करना मतलब प्रार्थना के साथ हर काम करना बहुत जरूरी है। इसलिए नहेमिया के जीवन से एक खास बात जो हम सीखते हैं वह यह है, नहेमिया एक प्रार्थना पुरुष था। दूसरा एक और बात हम देखेंगे, नहेमिया की पुस्तक उसका 6 अध्याय और उसका 3 पद हम पढ़ेंगे। नहेमिया 6 अध्याय 2 और 3 पद हम पढ़ेंगे। नहेमिया chapter 6 verse 2 and 3।
तब सनबल्लत और गेशो ने मेरे पास यो कहना भेजा, क्या हम ओनों के मैदान की किसी गांव में एक दूसरे से भेंट करें, परंतु वे मेरी हानि करने की इच्छा करते थे। परंतु मैंने उनके पास दूतों से कहा, अगला भेजा कि मैं तो भारी काम में लगा वही नहीं जा सकता, मेरे इसे छोड़कर तुम्हारे पास जाने से वो क्या क्यों बंद रहे।
यहाँ पर इन पदों को जो हम ध्यान से पढ़ते हैं, एक बात जो नहेमिया के जीवन का हम सीखते हैं वो यह है, नहेमिया वाज सीरियस इन हिज वर्क। नहेमिया अपना काम के प्रति गंभीर रहता था, सीरियसली अपना सेवा करता था। परमेश्वर ने उसको एक काम दिया, यरूशलेम का पुनर्स्थापन, यरूशलेम के दीवार को वापस खड़ा करना, यरूशलेम के शहर को पुनर्स्थापित करना। और ये काम, ये सेवा जो परमेश्वर ने नहेमिया को दिया, बहुत सीरियसली, बहुत ही ध्यानपूर्वक, बहुत ही गंभीरता के साथ नहेमिया इस काम को करता है। यहां पर देखिए, सनबल्लत और गेशेम दो शत्रु लोग, दो ये दुश्मन लोग, वो लोग उसको बोलते नहेमिया को, सुन ओनों के मैदान में आना, थोड़ा हमको काम है, वहां पर हम मिलेंगे, वहां पर हम बात करेंगे, वहां पर हम थोड़ा समय बिताएंगे, हैं आज की भाषा में कहे तो थोड़ा आना है, हमको हम थोड़ा बैठ कर बात करेंगे, हैं थोड़ा चाय पिएंगे, थोड़ा गपशप करेंगे। नहेमिया क्या जवाब दे रहा है, उसने कहला भेजा verse 3, मैं तो कौन से काम में लगा हूं, हैं भारी काम में लगा। देखिए काम के प्रति कितना सीरियसनेस है, मैं तो एक बहुत खास काम में लगा हुआ हूं, मैं तो एक बहुत गंभीर काम में लगा हुआ हूं, मैं एक बहुत भारी काम में लगा हूं, और क्या करूं, इसे छोड़कर मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकता। हम में से कोई होता तो क्या करते, अच्छा ठीक है आऊंगा, हाँ किधर वो ओनो क्यों, अच्छा अच्छा ओके ओके आओ जरूर आऊंगा, काम आपका कहो, काम सब चलता रहेगा। नहेमिया ऐसा व्यक्ति नहीं था, नहेमिया काम के प्रति सीरियस व्यक्ति था। अजीज विश्वासियों, आपको और मुझे पूछना है, परमेश्वर ने हम सबको अलग अलग सेवा दिया, परमेश्वर ने हम सबको अलग अलग काम दिया। जो काम परमेश्वर ने मुझे दिया है, जो काम परमेश्वर ने आपको दिया है, उस काम के प्रति हम गंभीर हैं या आसानी के साथ काम लेते हैं। हमें हमेशा याद रखना है, परमेश्वर की सेवा के लिए कोई भी काम एक तुच्छ काम नहीं। चाहे परमेश्वर के भवन में कुर्सी पोछने का काम क्यों ना हो, चाहे परमेश्वर के भवन में चटाई फोल्ड करके एक कोने में रखने का काम क्यों ना हो, शायद किसी भी प्रकार की सेवा करने का, या अतिथि सत्कार करने का, या गीत गाने का, या सेवा करने का, या सेवा टहल करने का, कोई भी काम क्यों ना हो, जो काम जो सेवा परमेश्वर ने हमें दिया है उसको परिपक्वता के साथ, सीरियसली है, गंभीरता के साथ करना बहुत जरूरी है। कई लोग बड़ी आसानी के साथ समझते हैं, अरे ये काम बहुत आसान है, ये काम हो जाएगा, नहीं, हमें गंभीरता के साथ काम लेना बहुत जरूरी है, इसको हम तुच्छ नहीं समझ सकते। एक लड़की थी, वो माँ बाप की इकलौती बेटी थी, उस माँ बाप की एक ही बेटी थी, एक ही लड़की थी। तो एक लड़की थी, वो एक दिन खिलौने से खेल खेल के बोर हो गई, परेशान हो, अब उसको कुछ नया खेल खेलना था। तो ऐसे ही जब वो जा रही थी, वो दरवाजे से थोड़ा सा टक्कर मारा, तो दरवाजा ऐसे थोड़ा सा बंद हुआ। तो कभी कभी कोई दरवाजा जब बंद होता है तो एक आवाज आती है, क्र, है ना, तो जब तेल ग्रीस वगैरह नहीं डालते स्क्रू में तब क्र करके आवाज, तो वहां से वो ऐसा आवाज निकला क्र, समझा रहे क्या हुआ। फिर वापस पीछे किया तो वापस क्र, फिर आगे किया फिर पीछे किया वापस वो ऐसा आवाज क्र क्र। अरे तो उसको एक नया गेम मिल गया, वो दरवाजे से बैठे बैठे क्र 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 ऐसा खेलने लगे। उसका डैडी पास में बैठकर काम कर रहा, बोला कौन ये क्र क्र कर रहा है, डैडी मैं हूं चुप करो क्र क्र नहीं कर। तो दो मिनट चुप बैठी, उसके बाद वापस क्र क्र। अरे बोला ना चुप बैठो क्यों क्र क्र कर रहा है, बार बार बोलने का है क्या, एक बार बोला सुनता नहीं। अच्छा अच्छा, फिर पांच मिनट के बाद क्र क्र, फिर बहुत जोर से चढ़ डैडी ने डांटा। इतने में मां बीच में आ गई, क्या बच्चा क्र क्र कर रहा है, कोई बात करने दो, नहीं क्र क्र नहीं करना। मैं ठीक, फिर दो मिनट बाद वापस आवाज आई क्र क्र। इस बार डैडी कुछ बोला नहीं, उठ के आके दो दिया टाइट थप्पड़ मार, वो बेटे रोने लगे। फिर मां आई, क्यों रो, क्यों आपने थप्पड़, बच्चे का दया नहीं है, क्यों था, क्या जरूरत थी, क्र क्र करे करने देते क्या, इतना शोर हो रहा है वो सब प्रॉब्लम नहीं है, जो रहते थे क्र 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 कर वो आपको बहुत हो रहा है क्या, अरे मार दिया मारने करके, तुम चुप रहो बीच में बोलने का नहीं। तो वो मां भी चुप, वो मां गई अपना काम करने, ये बेटी वहां कोने में बैठ के वह वह करके बुका फाड़ के रोने लगी। फिर बाद में देखा करीब दो तीन घंटे बाद डैडी को तरस आया, डैडी ने बोला क्या हुआ, क्या चाहिए आप तेरे को, मेरे को क्र क्र करना है, क्र क्र वह नहीं करना, सुधर गए समझे नहीं, ठीक है खाना खाने का टाइम आया, रात को खाना खाने का टाइम, खाना खाओ, मेरे को खाना नहीं चाहिए, क्यों नहीं चाहिए, क्या चाहिए फिर, क्र क्र कर नहीं करना, क्र खाना नहीं खाना मत खाओ, लेकिन क्र क्र नहीं, तो नहीं खाया। प्रार्थना के लिए बुलाया, प्रार्थना के लिए भी नहीं आया। सोने का टाइम हुआ, बिस्तर में आया, सब लाइट वाइट ऑफ हुआ, जब सब आवाज शांत हुआ, धीरे से एक आवाज आ रही है, बच्ची रो रही है, बेटी अभी भी रो रही है। मां ने जाकर बेटी को बोला बेटा रोना नहीं, कोई बात नहीं जाने दे, पापा ने तुम्हारा, कोई बात नहीं। बेटी थोड़ी देर चुप हुई, फिर बाद में थोड़ी देर और एक नींद, एक चपकी लगने के बाद मां जब उठी आधी रात को, देखा बच्ची अभी भी रो रही है। बेटी मां को बहुत अफसोस हुआ, वापस गई बेटी के पास, बेटा रोना नहीं कोई बात नहीं, वापस बेटी को पकड़ के सुलाया। बेटी थोड़ी देर सोई, फिर बाद में वापस मां की आंख जब खुली सुबह 4 बजे, बेटी अभी भी रो रही है। अरे उसको बहुत दुख हुआ, उसका इंतजार हुआ, उसका बाप जब उठा बेटी का, सुबह उसने चिल्लाया, देखा बेटी को मार दिया ना आपने, ना तो खाना खाया ना प्रेयर बोला, कुछ भी नहीं किया और रात भर रोती रही बेटी, बेटी भल में ऐसा क्रिकेट करने जाता क्या फर्क पड़ता, रात भर रोती, तुम तो अच्छा सो रहे थे, रात भर बच्ची सोई नहीं रोती रह रही। तो बेटी के पास गया, क्या हुआ क्या बात है, तो बाप भी परेशान, तो बाप ने बोला अच्छा ठीक है जा क्र क्र कर जाओ करो, क्या हुआ मालूम, वो उठ रही नहीं, वो अपनी जगह में रो रही, बोले मैंने बोला ना जाके क्र क्र कर, क्या हो गया, नहीं मेरे को कल क्र क्र करना, कल क्र क्र करना था, अब वो हो सकता है क्या, अब वो नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी उसका उसका नया जिद है, मेरे को कल क्र क्र करना। इसको हम नादानी बोलते, इसको हम नादानी, बचपना, नो सीरियसनेस है, परिपक्वता नहीं है, मैच्योरिटी नहीं। कई बार हम लोग हमारा सेवा के प्रति, हमारे काम के प्रति भी है परिपक्वता नहीं दिखाते। नहमिया अपने काम के प्रति बहुत ही सीरियस था, जो काम प्रभु ने दिया है वो छोड़कर कहीं और नहीं जा सकता, ये काम बहुत बड़ा काम है, ये काम बहुत भारी काम है, चाहे कोई भी बुलाए ये काम बंद करके मैं नहीं जा सकता। अजीज विश्वासियों, परमेश्वर ने आपको कुछ सेवा दिया है, आपको कुछ सेवा दिया है, क्या हम हमारे सेवा के प्रति गंभीर हैं, क्या हम हमारे सेवा के प्रति सीरियस हैं, क्या हम बड़े सीरियसली उस काम को परिपक्वता के साथ उस काम को करते हैं या नहीं, अपने आप को हम जांचे पड़ेंगे। हमारा सारा सेवा का हिसाब एक दिन उसको देना है, हम क्या हिसाब देंगे अपने आप को पूछना बहुत जरूरी है। एक और काम, एक और बात नहमिया के जीवन में से हम देखेंगे, पढ़ेंगे चैप्टर टू, नहमिया चैप्टर टू एंड वर्स 5। नहमिया की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय और उसका पांचवा पद।
राजा को आए और तू अपने दास से प्रसन्न हो तो मुझे यहूदा और मेरे पुरखाओं की कब्रों के नगर को भेज ताकि मैं उसे बनाओ।
यहाँ पर जो नहमिया के जीवन का गुण सीखते हैं वो यह है, नहमिया वो सबमिसिव टू द अथॉरिटीज। नहमिया अधिकारियों के अधीनता में रहने वाला एक व्यक्ति। यहाँ पर नहमिया राजा से क्या कह रहा है, यदि राजा को भाए, यदि राजा को अच्छा लगे तो तू अपने दास को और अपने दास से प्रसन्न हो तो मुझे मेरे देश में भेज ताकि मैं उसे वापस बना। इसका मतलब नहमिया जो कह रहा है वो यह है, यदि राजा परमिशन दे तो मैं जाऊंगा, यदि आप परमिशन नहीं देंगे तो मैं नहीं। ये वो सब में से सही अथॉरिटी जो उसके अधिकारी थे, हालांकि वो प्रभु को नहीं जानते हैं, हालांकि वो अपने परमेश्वर को नहीं जानते हैं, फिर भी उसको ऐसा एहसास था परमेश्वर ने उसे उस स्थान पर रखा है। अधिकारियों का कहना मानना, अधिकारियों के अधीनता में रहना, अधिकारियों के आज्ञाकारिता में रहना, ये उसका कर्तव्य है। इसलिए वो कुछ भी करने से पहले राजा से परमिशन पूछता है, राजा के परमिशन पूछने से पहले वो प्रभु से प्रार्थना करता है और उसके बाद राजा को कहता है यदि आप प्रसन्न हो, यदि आपको भाए, यदि आप परमिशन देंगे तो मैं यरूशलेम में जाऊंगा, वहां पर मुझे नगर बनाना है, वहां पर मुझे शहर को बसाना है, वहां पर मुझे उसका पुनर्स्थापन करना है। यदि आप भेजेंगे मैं जाऊंगा, यदि आप नहीं भेजेंगे मैं नहीं जाऊंगा। नहमिया वो सबमिसिव टू हिज अथॉरिटीज। नहमिया अपने अधिकारियों के अधीनता में जीवन बिताने वाला एक व्यक्ति। अजीज विश्वासियों, हम अपने आप के जीवन को जांचे, क्या हम हमारे अधिकारियों के अधीनता में अपना जीवन बिताते हैं? क्या हम उनके कहने के अनुसार, उनके बोलने के अनुसार, उनकी आज्ञा के अनुसार हम अपना जीवन बिताते हैं या नहीं, जांचना परखना बहुत जरूरी। कई बार हम उनका अवहेलना करते हैं, कई बार हम उनकी अनदेखी करते हैं, कई बार हम उनकी अनाज्ञाकारिता में जीवन बिताते हैं, लेकिन ऐसा कभी भी हम जो विश्वासी है हमारे जीवन में नहीं। हम उनका मजाक समान उड़ाते हैं। एक मां थी, मां का एक ही बेटा था, वो बेटा बड़ा बदमाश था। वो माँ बाप जो है मुर्गियां पालते थे। क्या पालते थे? मुर्गियां पालते थे। तो उस समय मुर्गी ने अंडे दिए और अंडे से चूजे मतलब मुर्गी का बच्चा, मुर्गी के बच्चे। तो उसका नाम था जॉनी। तो माँ ने जॉनी को बोला, जॉनी गो टू स्लीप, जॉनी सोने के लिए जाओ, सारे चूजे भी सोने के लिए चले गए। चूजे मतलब मुर्गी के बच्चे सोने के लिए चले गए, जॉनी तुम भी जाकर सो जाओ। जॉनी ने क्या जवाब दिया मालूम है? पहले मुर्गी सोने गई थी, इसका मतलब पहले आप सो जाओ फिर मैं सो जाऊं। पहले मुर्गी सोई थी उसके बाद चूजे सोए थे, इसका मतलब इनडायरेक्टली सीधा तो बोलने की हिम्मत नहीं, इसलिए वो ऐसा बोल रहा है, पहले मुर्गी सोई उसके बाद बच्चा सोया, मतलब पहले आप सो जाओ मैं आप सोने के बाद मैं सो। कई बार हमारा रवैया भी ऐसा होता है। कौन क्या है, बोला तो क्या हो, मेरे को ऐसा करना है, ये मेरा बात, राजा भेजे या ना भेजे मैं जाऊंगा, राजा मेरे को सिक्योरिटी दे या ना दे मैं यरूशलेम को बनाऊंगा, परमेश्वर ने मेरे को भेजा है, राजा कौन है मेरे को मना करने वाला? नहीं, मैंने ऐसा कहा क्या? राजा ने भेजा है, अगर परमेश्वर ने भेजा है तो राजा भी मना नहीं करेगा, लेकिन राजा का परमिशन पूछना जरूरी है, राजा को राजा के आज्ञाकारिता में रहना बहुत जरूरी है। अधिकारियों के अधीनता में रहने वाला एक व्यक्ति था। एक बाप था, آرمی میں کام کرتا تھا. آرمی میں جو لوگ کام کرتے ہیں وہ بہت اپنے پریوار میں ڈسپلن, اسپیشلی آفیسرس لوگ. تو ایک دن اس نے اپنے بیٹے سے کہا کھڑے ہو جاؤ, بہت بدماش بیٹا تھا, کھڑے ہو جاؤ. نہیں کھڑا. کھڑا ہوتا ہے کہ نہیں؟ نہیں کھڑا. ارے میں تمہارا باپ بول رہا ہوں, کھڑے ہو جاؤ, اسٹینڈ اپ. کچھ بھی کرنے سے کھڑا نہیں. میں لے کے آؤں کیا لکڑی؟ آپ کچھ بھی لے کے آؤ, میں کھڑا نہیں. وہ بیٹھا دیکھ رہا ہے لکڑی, ایک دم کھڑا ہو. کھڑے ہونے کے بعد کہتا ہے ڈیڈی آپ کے سامنے تو میں کھڑا ہوں پر میرے من میں ابھی بھی بیٹھا ہوں. آپ کے سامنے تو میں کھڑا ہوں لیکن میرے من کے اندر میں ابھی بھی بیٹھا ہوں. ایسا آگیا ماننے سے ضرورت نہیں. سب کے سامنے تو ٹھیک ہے لیکن من میں ابھی بھی اُدنڈتا اناگیا کاریتا, ابھی بھی میں بیٹھا ہوں. نہمیہ آگیا کاری ویکتی, جو ادھیکار جو لوگوں کو پربھو نے ہمارے اوپر نیوکت کیا ہے ان کا کہنا ماننا, ان کا آگیا ماننا, یہ آپ کا اور میرا کرتویہ ہے. یہ ہم کو کرنا بہت ضروری ہے. نہمیہ کے جیون کے بارے میں ایک اور سدگن ہم دیکھیں گے. نہمیہ کی پستک اس کا 6 ادھیائے اور اس کا 2 پد ہم پڑھیں گے. واپس سے یہ پد ہم نے پڑھا لیکن دوبارہ ہم پڑھیں گے. نہمیہ چیپٹر 6 ورس 2.
تب سنبلت اور گشیم نے میرے پاس یوں کہلا بھیجا, یا ہم اوروں کے میدان کی کسی گاؤں میں ایک دوسرے سے بیٹھ گئے, پرنتو وہ میری ہانی کرنے کی اچھا کرتے تھے.
پرنتو وہ میری ہانی کرنے کی اچھا رکھتے تھے. کیا مطلب؟ نہمیہ was able to discern the tactics of the enemy. نہمیہ شترو کے چال کو سمجھنے والا ویکتی تھا. نہمیہ کو سمجھ میں آیا یہ شترو لوگ جو میرے کو بلا رہے ہیں میری بھلائی کے لیے نہیں بلا رہے ہیں, میری ہانی کرنے کے لیے بلا رہے ہیں. عزیز وشواسیوں جب آپ اور میں اس دنیا میں ہم اپنا آتمک جیون جب بتاتے ہیں ہمارا بھی ایک شترو ہے. کون ہے؟ شیطان. اس کے چالوں کو سمجھنا بہت ضروری. ہمارے جیون میں وہ کیسے وار کرتا ہے, ہمارے جیون پر وہ کیسا آکرمن کرتا ہے, ہمارے جیون کو وہ کیسا دکھی اور پریشان کرنے کی کوشش کرتا ہے, اس کی یکتیوں کو اس کے چالوں کو اچھی طرح سمجھنا بہت. پولوس کیا کہتا ہے پڑھیے دوسرا کورنتھیوں کی پتری 2 ادھیائے اور اس کا 11 پد. سیکنڈ کورنتھینس چیپٹر 2 ورس 11. دوسرا کرنتھیوں 2 ادھیائے اس کا 11 پد.
شیطان کا ہم پر داو نہ چلے کیونکہ ہم اس کی یکتیوں سے انجان
ہم اس کی یکتیوں سے انجان نہیں ہیں. شیطان کا داو ہم پر نہ چلے اس لیے ہم اس کی یکتیوں کو سے انجان نہیں ہیں. اس کے ٹیکٹکس اس کے باتوں کو سمجھنا اس کے باتوں کو دھیان دینا یہ وشواسیوں کا کرتویہ. وی مسٹ ہیو دا ڈسرننگ اسپرٹ. شیطان ہم پر ہم سے کیا چاہتا ہے, شیطان ہم سے ہم پر کب وار کرتا ہے, شیطان ہم سے ہم پر کیسے وار کرتا ہے, کیسے آکرمن کرتا ہے, یہ سب بات دھیان رکھ کر ساودھانی کے ساتھ جیون بتانا بہت شیطان کو اوسر نہیں دینا. پولوس آگے کہتا ہے شیطان کو اپنے جیون میں اوسر نہیں دینا. شیطان کو ذرا سا اوسر دینے پر وہ ہمیں پوری طرح تباہ کر سکتا ہے, پوری طرح برباد کر سکتا ہے. اس لیے ذرا سا بھی اوسر ذرا سا بھی موقع شیطان کو دینا. پرانی کہانی ہے شاید کچھ لوگوں کو معلوم ہے, ایک ویکتی نے ایک مکان بنایا اور اس کو کرائے میں دے دیا. ایک کرایہ دار کو رکھا اور کہا تم یہاں پر رہو لیکن میں جب خالی کرنے کے لیے بولوں گا تب یہ مکان خالی کر. بولے برابر ٹھیک ہے. تو وہ اچھے سے رہ رہا تھا. 3-4 سال کے بعد وہ مکان مالک نے بولا میرا مکان اب خالی کر. تو یہ کرایہ دار نے کیا بولا معلوم ہے؟ میں خالی نہیں کروں گا. मैं 5 साल से इस मकान में रह रहा हूं, अब यह मकान किसका है? मेरा है। अरे बाबा, ये मकान मेरा है, तुम किराए से यहां पर रहते हो, तुम किराया हर महीने देते हो, अब मैं बोल रहा हूं तुमको खाली करने के लिए, खाली क्यों नहीं करता? नहीं, मैं खाली नहीं करता। बहुत परेशान हो गया, रोज आकर उसको बोलता था खाली करो, खाली करो, खाली नहीं करो। तो परेशान हो गया। लास्ट में एक दिन जब वो आया, बोला ये मकान खाली करो, उसने कहा एक शर्त पे खाली करूंगा, एक शर्त पे खाली करूंगा, यदि तुम मेरे को इतना पैसा दो तो मैं ये मकान खाली करूंगा। अब खुद का मकान उसको भी पैसा देकर लेना, कितनी दुविधा की बात है। फिर मकान मालिक ने सोचा कम से कम खाली तो कर रहा है, उसने पूरा पैसा देने के लिए तैयार। फिर उसने कहा एक और शर्त, ये मकान में जो मेन रूम है जहां पर सोफा और लोग आकर बैठते हैं, वहां पर मैं एक कील ठोक कर जाऊंगा, एक कील मैं ठोक कर जाऊंगा, वो कील का जगह किसका होगा? तुम्हारा नहीं, वो मेरा है। वो कील में तुम अपना कैलेंडर या अपना कुछ चीज नहीं लटका सकते, वो कील मेरा है, मैं मेरे को जो चाहिए मैं लटकाऊंगा, वो कील, कील का जगह। तीसरे से कील कितना जगह ले, मन में सोचा 2 कील का जगह ले ले, तू निकल तो सही यहां से। तो उसने कहा ठीक है, पैसा दे दिया। फिर बाद में उस दिन आके जब खाली किया, आके एक कील, वो कील, कील का तुम हाथ नहीं लगाना, कील पे तुम कुछ टांगना नहीं, वो कील किसका है? वो मेरा, वो कील का जगह वो मेरा जगह है। अरे हाँ बाबा, तुम्हारा जगह ठीक है। एक हफ्ते बाद वो वापस आया और क्या किया, क्या साथ में लेकर आया मल में? एक मरा हुआ चूहा, मरा हुआ चूहा लेकर आया, उस कील में बांध दिया। अब क्या हुआ, बहुत दुर्गंध फैली, परेशानी हो, अरे बाबा बैठ नहीं सकते। अंत में क्या हुआ मालूम है, इस मकान मालिक को मकान छोड़कर जाना पड़ा और वो वापस आकर उस मकान में रह गया। कहां से शुरुआत हुई, एक कील के जगह, जरा सा जगह दिया, उसके कारण क्या हुआ, उसको पूरा घर छोड़ना पड़ा। अजीज विश्वासियों, शैतान को यदि आप एक कील के जैसा जगह देंगे, धीरे 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 आहिस्ता आहिस्ता शने शने करके वो आपका पूरा घर आपसे छीन लेगा। शत्रुओं के चाल को समझना बहुत जरूरी। नहेमिया के पास ये आत्मा थी, नहेमिया को मालूम था ये शत्रु लोग मेरा हानि करना चाहते हैं, इसलिए वो समझ गया और सावधानी के साथ अपना जीवन बिताता था। इसलिए हम भी अपने आप को जांचें परखें, शैतान के चालों को समझकर, उसकी युक्तियों को समझकर, मसीह के हथियार को पहनकर सावधानी के साथ जीवन बिताने के लिए प्रभु हमारी भी सहायता करें। एक और बात हम देखेंगे, नहेमिया की पुस्तक उसका 13:30-31 हम पढ़ेंगे। नहेमिया चैप्टर 13:30-31, नहेमिया की पुस्तक उसका अंतिम अध्याय और अंतिम 2 हम पढ़ेंगे।
इस प्रकार मैंने उनको सब अन्य जातियों से युद्ध किया, अन्य जातियों से शुद्ध किया, और एक एक याजक और लेवी की बारी और काम ठहरा दिया। फिर तो मैंने लकड़ी की भेंट ले आने के विशेष समय ठहरा दिए और पहले पहले उपज के देने का प्रबंध भी किया कि मेरे परमेश्वर मेरे हित के लिए मुझे स्मरण करो।
यहाँ पर इन 2 को जब आप पढ़ेंगे, जो भी लिखा है वो पास्ट टेंस में लिखा। क्या कहता है, मैंने उनको अन्य जातियों से शुद्ध किया, उनके उनके बारी और काम ठहरा दिया, भेंट लाने का समय ठहरा दिया, पहली उपज देने का प्रबंध भी कर दिया। ये क्या बताता है हमें, दिस शोज अस दैट नहेमिया वॉज ए गुड फिनिशर। नहेमिया हर काम को समाप्त करने वाला आदमी। हम क्या करते हैं, काम को शुरू करते हैं। ब्रदर एक काम शुरू किया, आज उधर काम शुरू किया, आज इधर कल इधर शाम काम शुरू करना, अरे उधर काम शुरू किया, इधर भी कई काम शुरू किया, उधर भी एक छोटा काम शुरू किया। वेरी गुड ब्रदर, कब खत्म होगा? हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। वो जल्दी कभी आता ही नहमिया ऐसा व्यक्ति नहीं था। एक काम उसने लिया, काम को पूरा खत्म किया और उसके बाद कहता है मैंने सब कुछ कर दिया। पौलुस भी इस किस्म का आदमी था। दूसरे तिमोथियुस 4 अध्याय में वो कहता है मैंने अच्छी कुश्ती लड़ रहा हूं, ऐसा लिखा है? नहीं, लड़ लिया, मैंने विश्वास की रखवाली की है, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर चुका हूं। अजीज विश्वासियों, हम जो प्रभु के लोग हैं, हम जो प्रभु के संतान हैं, जो काम जो सेवा प्रभु ने हमको दिया है उसको शुरू करने के बाद खत्म करना भी बहुत जरूरी है। वी मस्ट फिनिश द वर्क व्हाट गॉड हैज एंट्रस्टेड टू अस। प्रभु ने जो काम हमको दिया है उसको समाप्त करना, उसको खत्म करना वो बहुत जरूरी है। मैं आपको बता दूं, काम शुरू करना बहुत आसान है लेकिन एक काम को खत्म करना बहुत कठिन। काम को शुरू करना बहुत आसान है लेकिन काम को कठिन करना, समाप्त करना और पूरा करना बहुत कठिन है। उसके लिए प्रभु का अनुग्रह चाहिए और जब प्रभु से हम अनुग्रह मांगते हैं, प्रभु हमें अनुग्रह जरूर देता है लेकिन प्रभु के अनुग्रह को पाकर, प्रभु की सहायता को पाकर नहमिया के समान वी मस्ट बी गुड फिनिशर्स। सब काम खत्म करने वाले, सब काम समाप्त करने वाले लोग बनकर हमें प्रभु के नाम की महिमा करनी चाहिए। एक और बात बताकर मैं समाप्त करूंगा। नहमिया की पुस्तक उसका 1 अध्याय में हम लौटेंगे। नहमिया chapter 1 verse 4 अगेन। नहमिया की पुस्तक 1 अध्याय उसका 4 पद हम फिर से पढ़ेंगे।
ये बातें सुनते ही मैं बैठ कर रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करता और स्वर के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता और ये कहकर प्रार्थना करता रहा।
किसके सम्मुख उपवास करता रहा? परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता। यह हमें किस बात को बताता है? दिस शोस अस नहमिया लिव्ड बिफोर गॉड। नहमिया अपना जीवन परमेश्वर के सामने देता था। नहमिया को हमेशा इस बात का बोध था, यूसुफ के समान, परमेश्वर मेरे साथ, परमेश्वर मुझे देख रहा है, परमेश्वर के सामने मुझे जीना। चाहे मेरे साथ अभी मेरे दोस्त नहीं होंगे, चाहे मेरे साथ मेरे रिश्तेदार नहीं होंगे, चाहे मेरे साथ मेरे कलीसिया के लोग नहीं होंगे, लेकिन मेरे सामने मेरा प्रभु है। प्रभु के सामने मेरे को जीवन बिताना है, प्रभु के सामने मुझे मेरा जीवन का हिसाब देना है, प्रभु के सामने मुझे खड़ा होना है, प्रभु के सामने मुझे बताना है मैं प्रभु के सामने क्या हिसाब दूंगा। प्रभु के सामने जीवन बिताना बहुत जरूरी। दुनिया की सारी चीजें अगर सामने हासिल हो लेकिन प्रभु के सामने हम जीवन नहीं बिताएंगे तो कुछ भी फायदा नहीं। लेकिन इसके लिए एक बात होना जरूरी है, प्रभु के सामने अगर जीवन बिताना है, प्रभु को जीवन में रखना बहुत जरूरी। जब तक इस प्रभु को व्यक्तिगत रीति से जानेंगे नहीं, जब तक इस प्रभु को व्यक्तिगत अनुभव में जानेंगे नहीं, अपना उद्धारकर्ता, अपना स्वामी, अपना प्रभु, अपना मालिक करके ग्रहण स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक हम प्रभु को जानेंगे नहीं। और जब तक प्रभु को जानेंगे नहीं, प्रभु के सामने जिएंगे नहीं, और जब तक प्रभु के सामने जिएंगे नहीं, तब तक ये दुनिया और दुनिया की सारी बातें व्यर्थ है। मैं आज भी कहता हूं, पौलुस कितने बार कारागृह में डाला गया, कितने बार सताया गया, है ना? पौलुस कितने बार सताया गया। आप नए नियम का अध्ययन करेंगे, जिस कैसर ने उसको, पौलुस को सबसे ज्यादा सताया, उस कैसर का नाम क्या था? उस कैसर का नाम था नीरो। जिस कैसर ने पौलुस को सबसे ज्यादा सताया, जिस कैसर ने प्रभु को, पौलुस को सबसे ज्यादा जेल में डाला, उसको परेशान किया, उसको दुखी किया, उसका नाम था नीरो। ध्यान से सुनना, आप पौलुस भी उसी जमाने में जीता था, नीरो भी उसी जमाने में जीता था। नीरो महल में रहता था लेकिन पौलुस सामने वाला जेल में रहता, महल के सामने जेल। नीरो के पास सारा सुख सुविधा का सामान था, पौलुस के पास क्या था? सर्दियों में ओढ़ने के लिए कंबल भी नहीं। तिमोथियुस के पत्र अंतिम अध्याय में वो कहता है, قیامت دن جب تو آئے گا میرے کپڑے اور میرا کمبل اور میری کتابیں لے کر. ٹھنڈ لگ رہی ہے, اوڑھنے کے لیے کچھ نہیں ہے, ہاتھ پیر سے خون بہ رہا ہے, تیمتھیوس میرے کو تکلیف ہو رہی ہے, ٹھنڈ لگ رہی ہے, کمبل نہیں ہے, تو آئے گا تھوڑا کمبل ساتھ ملے. نیرو وہاں پر ہے, اس کے پاس کمبل ہے کیا؟ اس کے پاس سب کچھ ہے, اس کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے, لیکن پولس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. لیکن ایک بہت بڑا انتر تھا, نیرو کے پاس پرمیشور نہیں ہے, پولس کے پاس پرمیشور. اس لیے کیا ہوا, 2000 سال لگ بھگ بیت گئے, ہے نا, ابھی لگ بھگ 2000 سال بیت گئے. کیا آج آپ کسی کا نام سنتے ہیں مسٹر نیرو؟ نہیں سنتے. ایک بار میں نے سنا, ایک گھر میں گیا دکشن بھارت میں, نیرو نیرو دیکھنا پڑے گا کون نیرو ہے. نیرو پہلی بار سنا, نیرو جو نیرو, کون نیرو ہے؟ نیرو کو بلا رہے, نیرو ادھر آؤ ادھر آؤ بول رہے. تو نیرو آیا, کون تھا معلوم ہے؟ گھر کا کتا, گھر کا کتا, کتے کا نام نیرو. لیکن آج پال کس کا نام ہے؟ کتنے لوگوں کا نام, کتنے سارے لوگوں کا, کتنے ڈاکٹرز, کتنے سائنٹسٹ, کتنے ماں باپ آج بھی بیٹا سے پربھو آشیش دیتا ہے, بیٹے کا نام پال. اس سمے نیرو کے پاس سب کچھ تھا, لیکن آج کے زمانے میں نیرو کون ہے؟ کتے کے سمان. اس سمے پولس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا, اوڑھنے کے لیے کمبل بھی نہیں تھا, لیکن آج پول کو یاد کرتے ہیں لوگ عزت کے ساتھ, یاد شردھا کے ساتھ یاد کرتے ہیں. آج بھی اپنے بچوں کا نام پول. کیوں؟ پول پرمیشور کے سامنے جیتا تھا, نیرو پرمیشور کو نہیں جانتا تھا. نہمیہ پرمیشور کے سامنے جیتا تھا, پرمیشور کے سمکھ اپنا جیون بتاتا تھا. اس لیے اتنے سال بیت گئے, ہزاروں سال بیت گئے, نہمیہ کا نام مٹا نہیں ہے, نہمیہ کا نام برباد نہیں ہوا ہے, نہمیہ کا نام لوگ بھول نہیں گئے ہیں, نہمیہ کا نام لے کر کسی دوسرے پرانیوں کا نام نہیں رکھا ہے. آج بھی کتنے لوگوں کا نام نہمیہ. کیا ہے آپ کا نام؟ میرا نام مسٹر نہمیہ. شردھا کے ساتھ, عزت کے ساتھ اس کا نام لیا جاتا ہے. کارن ایک ہی کارن ہے, پرمیشور کے سامنے جیتا. عزیز وشواسیوں, آپ اور میں, ہم کس کے سامنے جیتے ہیں؟ ہم چرچ کے سامنے جیتے ہیں, ہم لوگوں کے سامنے جیتے ہیں. لوگوں کے سامنے آتے ہیں اچھے بن جاتے ہیں, لیکن جب اکیلے ہو جاتے ہیں اصلی رنگ میں نہیں. چاہے ہم سب کے سامنے ہو یا گپت میں ہو, چاہے ہم روشنی میں ہو یا اندھیرے میں ہو, چاہے ہم باہر ہو یا گھر میں ہو, چاہے ہم کہیں بھی کیوں نہ ہو, ہمیشہ اس بات کا بوجھ رہنا چاہیے, میرا پرمیشور کے سامنے مجھے جینا ہے, پرمیشور کے سامنے اپنا جیون. عزیز وشواسیوں, نہمیہ کے سمان جیون بتانے کے لیے, نہمیہ کے سمان پرمیشور کو جاننے کے لیے, نہمیہ کے سمان پرمیشور کو اپنے سمک اپنے سامنے جان کر پرمیشور کی مہیما کے لیے جیون بتانے کے لیے پربھو آپ کی اور میری سہایتا کرے. پربھو ان وچاروں کو آشیش کر کے ہمیں دے. آئیے ہم پرارتھنا کے لیے اپنے سروں کو جھکائیں اور اپنی آنکھوں کو بند کریں. مہربانی سے سارے سر جھک جائیں اور ساری آنکھیں بند ہو جائیں. And in this solemn moment, shall we examine our lives for a moment. اس گمبھیر اور سنجیدگی کے سمے میں ایک پل ہمارے جیون کو ہم جانچے. نہمیہ کے جیون میں سے ہم نے دیکھا, نہمیہ پرارتھنا کرنے والا پرش تھا, نہمیہ اپنی سیوا کے پرتی گمبھیر تھا, پریپکوتا کے ساتھ اس نے اپنا سیوا کیا, نہمیہ ادھیکاریوں کے ادھینتا میں اپنا جیون بتایا, ادھیکاریوں کے آکیاکاریتا میں اس نے اپنا جیون بتایا, نہمیہ شترو کا چالوں کو سمجھتا تھا, شترو کے یکتیوں کو سمجھنے والی آتما نہمیہ کے جیون میں تھی, نہمیہ کام کو شروع کرنے والا ہی نہیں کام کو ختم کرنے والا ویکتی بھی تھا, نہمیہ اپنے پرمیشور کو جانتا تھا اور نہمیہ اپنے پرمیشور کے سامنے अपना जीवन बिताता था। अजीज विश्वासियों, आज भी परमेश्वर को नहेमिया चाहिए। आज परमेश्वर को नहेमिया के समान लोगों की आवश्यकता है। क्या आप कहेंगे, प्रभु जी मैं तेरे सामने जीऊंगा, मैं प्रार्थना पूर्वक जीऊंगा, गंभीरता के साथ अपनी सेवा में करूंगा, अपने अधिकारियों के अधीनता और आज्ञाकारिता में मैं जीवन बिताऊंगा, दुश्मन की चालों को समझकर सतर्कता और सावधानी के साथ अपना जीवन बिताऊंगा, हर काम जो शुरू करूंगा आपके अनुग्रह से मैं खत्म करूंगा, आपको अपने सामने जानकर मैं पवित्रता और गंभीरता के साथ अपना जीवन बिताऊंगा। इस प्रार्थना के साथ प्रभु को हम समर्पित करें। प्रभु आज भी हमें इस्तेमाल करेगा और आज के जमाने का नहेमिया आपको बना सकता है। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित महान स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आभारी है पिताजी आपके वचन के लिए, आभारी है पिताजी नहेमिया के जीवन के लिए। नहेमिया का जीवन कितना श्रेष्ठ जीवन है, नहेमिया का जीवन कितना धन्य जीवन है। कोई नुक्स, कोई अनुचित काम, कोई खोट नहेमिया के जीवन में हम नहीं देखते। नहेमिया आज्ञाकारी व्यक्ति था, नहेमिया प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था, परमेश्वर को अपने सामने जानकर अपना जीवन बिताने वाला व्यक्ति था। पिताजी आप हमारे भी सहायता करें। आज के जमाने में जब लोग आपसे दूर चले जाते हैं, विश्वास में शिथिलता आती है, सरगर्मी के साथ, आत्मसमर्पण के साथ, आत्मचिंतन के साथ आपको हमारे सामने रखकर विनम्रता और प्रार्थना के साथ, आज्ञाकारिता और गंभीरता के साथ अपना जीवन बिताकर जो सेवा आपने दिया है आपके अनुग्रह से आपकी महिमा के लिए हम उसे समाप्त कर सकें। हम सबको आप आशीष दें नहेमिया के समान जीने के लिए, आपकी महिमा प्रशंसा करने के लिए, तारीफ और महिमा करने के लिए आप हम सबकी सहायता और मदद कीजिए। धन्यवाद के साथ छोटे बिनती निवेदन, हमारे मुंजी और वापस शीघ्र आने वाले प्रभु यीशु मसीह के धन्य और पवित्र नाम में होकर मांगते हैं। आमीन।